सिटी हॉस्पिटल। आस्तिक लावण्या के माता पिता के साथ अस्पताल के वेटिंग एरिया में था और ऑपरेशन थिएटर में लावण्या का ऑपरेशन चल रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। आस्तिक जल्दी से उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर अब कैसी है, लावण्या ठीक तो है ना? डॉक्टर ने घबराई हालत में कहा, देखिए हमने ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक उसे होश नहीं आता है तब तक उसकी हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक और ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी। आज वो लावण्या के लिए खुद को दोषी मान रहा था। वो जानता था कि लावण्या ने उसके लिए चाल चली थी और उसके साथ धोखा किया था, लेकिन फिर भी वो ये नहीं भूल सकता था कि लावण्या स्कूल के टाइम से उसकी दोस्त थी और अपने सबसे ज़रूरत के टाइम पर उसे सबसे पहले लावण्या का ही ख्याल आया था। लावण्या के माता पिता ने डॉक्टर की बात सुनी तो उन दोनों के चेहरे पर डर छा जाता है। आस्तिक ने अपनी आंखें बंद कीं और गुस्से में डॉक्टर को देखते हुए कहा, उसे बचाने के लिए जो कर सकते हो करो डॉक्टर, मेरी इजाज़त के बिना वो मर भी नहीं सकती है। पैसों की चिंता मत करो, चाहे तो फौरन से बेस्ट डॉक्टर की टीम हायर करो, लेकिन मुझे लावण्या सही सलामत चाहिए। डॉक्टर आस्तिक से बोले, वैसे हमने ऑपरेशन कर दिया है और दो गोलियां निकाल दी हैं, लेकिन अगले 24 घंटे के बाद ही हम उनकी हालत के बारे में बताएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर आस्तिक का गुस्सा बढ़ जाता है और वो डॉक्टर की कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, तुम डॉक्टर हो, तुम अगर नहीं बचा सकते तो फिर क्यों खुला है ये अस्पताल और क्यों पहना है ये डॉक्टर का कोट? आस्तिक क्या कर रहे हो? पीछे से आई इस आवाज़ ने आस्तिक को बिल्कुल चुप कर दिया था। वो हैरानी से पीछे पलट कर देखता है। उसने देखा कि सामने अरुणिमा खड़ी है और वो घबराई हुई नज़रों से आस्तिक को देख रही है। आस्तिक के हाथ डॉक्टर की कॉलर पर ढीले पड़ जाते हैं और वो हैरानी से अरुणिमा को देखने लगता है। अरुणिमा तेज़ी से आस्तिक के पास आती है और आस्तिक को घबराई हुई नज़रों से देखते हुए कहती है, आस्तिक तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अरुणिमा के चेहरे पर उसके लिए फ़िक्र थी। आस्तिक हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था। वो यहाँ क्या कर रही है और उसे उसके बारे में किसने बताया? उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा के ऊपर ही थीं और अरुणिमा की आंखों में आंसू, चेहरे पर घबराहट थी। उसने आस्तिक को पूरी तरह से देखा और जब पाया कि वो ठीक है तब वो दौड़कर उसके गले लग जाती है और सुबकते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम पर हमला हुआ है? आस्तिक ने धीरे से अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से अलग करते हुए वो कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल मुझ पर हमला हुआ था लेकिन हमले का शिकार लावण्या हुई है। पता नहीं ये हमला किसने करवाया था और उसकी हालत की जिम्मेदार कौन है? तुम हो उसकी इस हालत की जिम्मेदार, लावण्या की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। अरुणिमा हैरानी से लावण्या की माँ को देखती है और उसके पिता उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लावण्या की माँ संभाले नहीं संभल रही थी। वो गुस्से में आस्तिक को देखती हैं और कहती हैं, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस हालत में है कि उसकी जान पर बनाई है। वो तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंची है। तुम एक राक्षस हो, तुम सच में एक शैतान हो जो किसी की परवाह नहीं करते हो। बस बहुत हो गया, आस्तिक एकदम से हैरान होकर अरुणिमा को देखता है क्योंकि ये चिल्लाने की आवाज़ अरुणिमा की थी। उसने पहली बार अरुणिमा को इस तरीके से किसी पर चिल्लाते हुए सुना था। और अरुणिमा गुस्से में लावण्या की माँ को देखती है और उससे कहती है, मुझे पता है आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाएंगी। आपको कोई हक नहीं है मेरे पति के ऊपर झूठा दोष लगाने का। अगर आपने ऐसा किया तो मैं उम्र का लिहाज भूल जाऊंगी। आपकी बेटी के लिए मैं आपके साथ हमदर्दी जता सकती हूं, लेकिन उसकी ये हालत की जिम्मेदार मेरे हस्बैंड नहीं बल्कि वो खुद है। लावण्या के माता पिता अरुणिमा की बात सुनकर हैरान थे, यहाँ तक कि आस्तिक खुद हैरान था कि अरुणिमा इस तरीके से उसके लिए किसी से लड़ रही है और वो आस्तिक को गलत मानने से भी इनकार कर रही है। लेकिन लावण्या की माँ गुस्से में अरुणिमा को देखकर बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। मेरी बेटी कभी गलत लोगों की संगत में नहीं रही है कि उसकी कोई दुश्मन बन जाए। ये सब तुम्हारे पति ने किया है। लेकिन आस्तिक अरुणिमा के पास आकर खड़ा होता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है, देखिए मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ लेकिन लावण्या सच में किन्हीं गलत लोगों के चक्कर में फंस गई थी, तभी जाकर उसने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मुझे इस बात का पता चल गया तो मैं उसकी क्या हालत करूँगा। आप जानती नहीं है आपकी बेटी ने मेरी बीवी के लिए क्या क्या साजिशें रची हैं। यहाँ तक कि उसने हमारे घर पर एक ऐसे इंसान को भेजा था जिसकी वजह से मेरी बीवी की इज्जत पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो गई थी। और जब हम बैंगलोर में थे तो उसने अरुणिमा पर कई तरीके से जानलेवा हमले भी करवाए थे। इन सब के बावजूद भी मैंने सिर्फ लावण्या से बात करना और उसे समझाना सही समझा।
मैं सिर्फ उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसके जरिए वो ये सब कर रही है, क्योंकि मैं लावण्या को जानता हूँ, वो खुद से तो ये सब प्लान नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने आप लोगों को जरिया बनाया था कि लावण्या डर जाए और मुझे उस इंसान का नाम बताए, पर उससे पहले ही ये सब हो गया। लावण्या की माँ को इन सब का यकीन ही नहीं हो रहा था, उसके कदम डगमगा रहे थे और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। लावण्या के पिता ने उन्हें कसके पकड़ लिया और शांत करवाने की कोशिश करने लगे। डॉक्टर भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, देखिए, आप लोग अस्पताल में हैं तो यहाँ पर प्लीज इस तरीके का शोर शराबा मत कीजिए। अभी अभी एक पेशेंट की सर्जरी हुई है और यहाँ पर बाकी पेशेंट भी हैं। अगर आप लोगों को बात करनी है तो आप कैंटीन में जाकर बात कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लावण्या की माँ अभी भी सुबक रही थी और उसके पिता ने उसे संभाले रखा था। थोड़ी देर बाद आस्तिक अरुणिमा को लेकर एक विंडो के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? अरुणिमा उसे देखती है और कहती है, कल रात पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नीरज को फोन किया तो नीरज ने मुझे बताया कि तुम पर हमला हुआ है और तुम सिटी हॉस्पिटल में हो। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मुझे लगा तुम पर अटैक हुआ है और तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन ये लावण्या यहाँ क्या कर रही है और पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? आस्तिक ने अरुणिमा को सब बता दिया कि लावण्या शायद किसी चाल के जरिए उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है और इसमें वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई मिला हुआ है और शायद कोई ऐसा है जो शायद रायचंद परिवार से ही है। बच्चों के बिना अंदर वाले की मदद लिए लावण्या इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकती है। ये सारी बातें सुनकर अरुणिमा एकदम से हैरान हो गई थी। अब उसे पता चला क्यों लावण्या की माँ आस्तिक को जिम्मेदार ठहरा रही थी। तभी वहां पर लावण्या के पिता आ जाते हैं और वो आस्तिक से कहते हैं, आस्तिक बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ अकेले में?
आस्तिक ने हाँ में सर हिलाया तो अरुणिमा लावण्या की माँ के पास चली जाती हैं, जो इस समय वेटिंग चेयर पर अकेली बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अरुणिमा उनके पास बैठ जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आंटी जी। लावण्या की माँ नम आंखों से अरुणिमा को देखती है तो अरुणिमा धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी आंटी जी, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की है, लेकिन उस वक्त आप मेरे पति के बारे में जो कह रही थीं मैं वो सुन नहीं पाई, इसलिए गुस्से में आकर मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लावण्या की माँ के आंसू निकल आए और वो रोते हुए कहती हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी क्या कर रही है और क्या नहीं, तुमने तो बस अपने पति का साथ दिया है, लेकिन मेरी बेटी, वो तो हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर नहीं करती थी, हमें नहीं पता था कि वो किन लोगों के साथ कांटेक्ट में थी और उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी बात का यकीन मानो अरुणिमा, मेरी बेटी कभी भी आस्तिक को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकती थी, वो जानती थी आस्तिक बहुत खतरनाक है, ऐसे में वो उसे कैसे उलझा सकती है, लेकिन जब उसे गोली चली तो मैंने ही उसे संभाला था, मेरी तो खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अपनी बेटी को खून में देखकर, लेकिन जब उसे गोली लगी और उसकी सांसें उखड़ रही थी तो मेरी गोद में लिपटे हुए उसने मुझे एक नाम बताया था, इतनी टेंशन में मैं उस नाम को भूली गई थी, अभी जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे उस नाम का याद आया, शायद ये नाम आस्तिक को उस इंसान तक पहुँचा दे जो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अरुणिमा एकदम हैरान हो जाती है और हैरानी से कहती है, क्या लावण्या ने आपको कोई नाम बताया है? किसका नाम है वो, आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं उसे पहचानती हूँ। लावण्या की माँ कुछ याद करने की कोशिश करती है। वो पल ही इतना डरावना था कि उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने याद किया और डरते हुए उन्होंने अरुणिमा को देखकर बताया, हाँ, लावण्या अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ कुछ सूर्य नाम ले रही थी। जैसे ही अरुणिमा ने ये नाम सुना उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके होंठ कांपने लगते हैं, उसका दिल तेजी से धड़क जाता है। ये नाम वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती है।